समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, नमस्कार। आज सवेरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं होस्ट दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया के समाचार जिनका है आपसे सरोकार। इसके अलावा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और साथ ही कुछ मशहूर हस्तियों को याद करेंगे। सुभद्रा।
Hello Divya, good morning to you and hey there listeners, happy Thursday to you all. We are ready with another interesting edition of Aaj Savere. So stay with us and enjoy. For starters Divya, let's give them some news headlines.
आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी नेता नायाब सिंह लगातार दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल श्री सिंह ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्य में सरकार गठन का दावा पेश किया। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि राज्य में 24,000 सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित इन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
Prime Minister Narendra Modi will chair a half-day conclave of chief ministers of the National Democratic Alliance, NDA, and their deputies in Chandigarh today. BJP President JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah will also attend the meeting. According to a BJP statement, the proceedings will begin immediately after the swearing-in ceremony of Nayab Singh Saini as Chief Minister of Haryana. The meeting will follow a structured agenda focusing on national development issues. It will also include discussions on the observance of the Samvidhan Ka Amrit Mahotsav. The BJP currently has 13 chief ministers and 16 deputy chief ministers, while the chief ministers of Maharashtra, Andhra Pradesh, Bihar, Sikkim, Nagaland and Meghalaya are from its allies.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस और पाली भाषा के महत्व तथा बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी समारोह को संबोधित करेंगे। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पाली को हाल ही में 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है।
President Draupadi Murmu held a bilateral meeting with her Mauritanian counterpart Mohamed Oleg Ghazouani yesterday. President Murmu also participated in the delegation-level talks. 4 MOUs were signed between the two countries to strengthen the bilateral ties. An agreement for consultation between the Ministry of External Affairs, India, and Ministry of Foreign Affairs, Mauritania, was signed for promoting bilateral relations in various fields of common interest for strengthening international peace and security. The second MOU was between training institutes of foreign relations of both countries for facilitating cooperation, and the third MOU signed was on exemption of visa requirements for diplomatic and official passport holders. The fourth MOU was on the cultural exchange programs between the two countries from 2024 to 2028. President Draupadi Murmu also attended a community event where she interacted with Indian diaspora in Mauritania. Later in the evening, President departed from Malawi for the final leg of the three-nation visit. President Murmu will be on a 3-day visit to Malawi from today till the 19th of this month. She is scheduled to have bilateral meetings with the leadership of Malawi and also to meet the Indian diaspora.
भारत ने फिर कहा है कि भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कनाडा कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की विदेशी हस्तक्षेप आयोग में बयान को लेकर मीडिया के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बयान इस बात की पुष्टि करता है कि जो भारत हमेशा से कहता आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के शिष्टाचार रहित व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए केवल ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं।
इन फुटबॉल, इंडिया विल फेस आर्च राइवल्स पाकिस्तान इन द ओपनिंग मैच ऑफ द सैफ विमेन्स चैंपियनशिप 2024 इन काठमांडू नेपाल टुडे। द मैच विल स्टार्ट एट 5:15 PM IST। द इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम एंड पाकिस्तान आर ड्रॉन इन ग्रुप ए अलॉन्ग विद रेनिंग चैंपियंस Bangladesh. All matches will be held at the Dasharath Rangshala Stadium in Kathmandu. Group B includes hosts Nepal, Bhutan, the Maldives and Sri Lanka. The final will be played on the 30th of this month.
और आइए अब सुभद्रा चलते हैं राज्यों के पास।
yes,
के पास क्या है खास समाचार?
Yeah, I'm going to Chennai, Bengaluru and Hyderabad. First of all, news from Chennai. The Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh K. Tripathi, has said that the Indian Navy stands committed to protect and promote India's maritime interests anytime, anywhere and anyhow. The Vice Chief of Naval Staff, Vice Admiral Krishna Swaminathan, chief guest for the event, called for continued regional cooperation and coordinated the efforts to overcome maritime security challenges through the platform of Rashtriya Raksha University. He highlighted the presence and response of the Indian Navy in the Indian Ocean region through detailed statistical information as to the rumor of operations and missions carried. Bengaluru news now. Karnataka Bengaluru Development Minister D.K. Shivkumar yesterday defended his government against the opposition party criticism on the mismanagement after the menace created by torrential rains in Bengaluru. Saying that it is not possible to control nature, the senior minister in the cabinet said that the opposition parties must stop tarnishing the image of the city. He promised to hold a meeting of the city municipal corporation, police and fire departments to see the restoration work being carried out after rain disrupted normal life in the city since yesterday. Speaking to media persons at a different location, the chief commissioner of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, Tushar Girinath, informed that two fire department machines were put into service to pump out water at Kendriya Vihar apartments, where he said the water level had reached 3 feet high. Getting to some Hyderabad news now. In Telangana, 7 people of a family, including 3 children, died when the car in which they were travelling plunged into a stream in Medak district yesterday. According to the police, the incident took place at Usiri Kapelle village when the family was returning from Tupran. The driver of the car survived the mishap but suffered injuries. The local people informed that the car initially crashed into a tree before veering into the stream. And Divya, over to you now for rest of the news.
And now let's go to Delhi. इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 देशों की भागीदारी शामिल है। अग्रणी दूरसंचार कंपनियां और इनोवेटर इस कार्यक्रम में क्वांटम प्रौद्योगिकी और सर्कुलर इकोनॉमी में प्रगति को उजागर कर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 आयोजित की जा रही है। ये मंच एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है जो दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ ला रहा है। इस 10 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार उद्योग की आवश्यकता और भविष्य पर आधारित विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें नवाचार को लेकर भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, ऑडियो विजुअल मीडिया से जुड़े विषय, डेटा सुरक्षा और डिजिटल विभाजन की चुनौतियों पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली में ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 6 दिवसीय इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचक शामिल हो रहे हैं। श्री शेखावत ने भारतीय नृत्य परंपरा के इस वैश्विक महोत्सव में सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ये उनके लिए गरिमा और गौरव का पल है। महोत्सव के दौरान शहर के कमानी ऑडिटोरियम में शाम के समय नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के प्रख्यात नृत्य कलाकारों के समूह अपनी प्रस्तुति देंगे। आगंतुक कमानी ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक नृत्य का निशुल्क आनंद ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा कल से RRTS के गाजियाबाद स्टेशन पर नमो भारत पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें लोकप्रिय आत्मकथाएं, क्लासिक और समकालीन साहित्य, फिक्शन, नॉन फिक्शन और बच्चों की पुस्तकों सहित अन्य पुस्तकें शामिल होंगी। ये मेला सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला है। पुस्तक प्रेमी शुक्रवार तक इस मेले में निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में इस निर्णय की कल घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से NOC प्राप्त करना अनिवार्य था, जिसके कारण उन्हें लंबी कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब इन कॉलोनियों में बिना NOC के 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राजधानी के 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को लाभ मिलेगा। और अब चलते हैं मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम ने घोषणा की है कि वो प्रत्येक मतदाता के घर पर मतदान केंद्र की जानकारी के साथ QR कोड वाला मतदान पत्र पहुंचाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए BMC कमिश्नर भूषण गगरानी ने बताया कि मुंबई में लोकसभा चुनावों के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को होने वाली कतारों और असुविधाओं के मद्देनजर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यदि एक स्थान पर 10 से अधिक मतदान केंद्र हैं तो उन्हें पास के केंद्रों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मुंबई शहर जिले में कुल 2537 मतदान केंद्र हैं। मुंबई जिला चुनाव अधिकारी श्री भूषण गगरानी ने महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी के लिए मुंबई शहर और मुंबई उपनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री गगरानी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता और पूरी चुनाव प्रक्रिया के कार्यान्वयन में सहयोग करने का आग्रह किया है। जिला चुनाव अधिकारी ने सभी को आचार संहिता का पालन करने पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि 1995 के संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी बैनर, पोस्टर, स्टिकर और विज्ञापन हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी श्री राजेंद्र शीरसागर ने कहा कि केंद्र पर मतदाताओं को असुविधा न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नामांकन, चुनाव कार्यक्रम, मतदान उपकरण और अन्य प्रासंगिक मामलों की प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। कोलकाता में आपदा प्रतिक्रिया विभाग ने चक्रवातों और किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा और आपात स्थिति पर नजर रखने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के समुद्र और नदियों के किनारे 30 हाई पावर कैमरे लगाए हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले तैयार रहने और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए ये कदम उठाया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय इलाके चक्रवातों की दृष्टि से संवेदनशील हैं। 2 साल पहले काकद्वीप और सागर इलाकों में ऐसे 5 कैमरे लगाए गए थे। ये कैमरे मजबूत हैं और बिजली गिरने से भी इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और सुभद्रा, आज गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिवस गरीबी को एक बहुआयामी घटना के रूप में रेखांकित करता है, जिसमें आय की कमी और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बुनियादी क्षमताओं की कमी दोनों शामिल हैं। इसका उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और समाज के अन्य लोगों के बीच समझ और संवाद को बढ़ाना है, ताकि गरीबी को मिटाया जा सके, इसके लिए पॉलिसीज लाई जा सके।
And of course, the theme for this year's this International Day for Eradication of Poverty is Ending Social and Institutional Maltreatment, Acting Together for Just, Peaceful and Inclusive Societies. And of course, the day provides an opportunity, a platform for, you know, social workers, NGOs and other charity organizations, you know, to get together and find ways to stop this social maltreatment and other discriminatory policies and practices. And Divya, one cannot deny poor people of their fundamental human rights, you know, the basic ones like education, health, care facilities, housing, etc. So it's about giving them the chance to live with dignity.
Bilkul, Subhadra. और अब आज सवेरे में बात महानगरों के मौसम की। आज दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है।
And going to the other cities, Chennai is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 2 degrees Celsius, maximum will be around 26 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 25 degrees. Hyderabad is expected to have rain or thunder showers towards evening or night. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees Celsius and a maximum of 32 degrees Celsius. So now we are going to the events. Divya?
और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1605 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का निधन आज ही के दिन हुआ।
1777, American troops defeated British forces in Saratoga, New York. It was the turning point in the American Revolutionary War.
और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद खान का दिल्ली में जन्म हुआ।
1870, the port of Calcutta was brought under the management of a constitutional body. And in 1877, Thomas Edison's phonograph, the first device for recording and playing back sound, was successfully demonstrated in Menlo Park, New Jersey. And in 1888, the first issue of National Geographic magazine was released at newsstands.
और 1912 में बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने पहली बार जर्मनी पर हवाई हमले किए 1917 में। 1933 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नाजी जर्मनी से अमेरिका चले गए।
And 1933, Newsweek appeared for the first time at newsstands. And 1907, Marconi began radio's first regular broadcasting service, with the first official broadcast taking place in Italy. The first commercial transatlantic wireless service that marked a significant advancement in communication technology.
महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। द्वितीय विश्वयुद्ध में पहली बार जर्मनी की पनडुब्बी ने एक अमेरिकी पोत पर हमला किया।
1947, ब्रिटेन एंड बर्मा साइंड एन एग्रीमेंट दिस डे गिविंग बर्मा फुल इंडिपेंडेंट आउटसाइड ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इफ इट चूजेस दैट एंडेड 300 years of British rule over the country. And also 1956 this day, chess legend Bobby Fischer wins the game of the century. The chess match between 13-year-old Fischer and Donald Byrne took place at the Marshall Chess Club in New York City. And 1963, friends, the Beatles record the first of their Christmas records, which were spoken word greetings sent out on a thin, flexible vinyl sheet called a flexi disc to members of their fan club.
1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2003 में चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की। और 2009 में हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी।
Friends, welcome back to Aaj Savere. We are going to start with some personalities now, the ones who went away or the ones who are celebrating their birthdays today. This day, 1919, marks the birth of one of the most well-known American writers, Rita Hayworth, who was also a talented actress and dancer. And also American playwright Arthur Asher Miller was born this day, 1915, a prominent figure in American theater, writing dramas that include plays such as All My Sons, 1947, Death of a Salesman, 1949, and The Crucible, 1953.
और आज रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती है. अश्विन माह की पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है. उन्हें संस्कृत का आदि कवि या प्रथम कवि भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की थी. महान ऋषि बनने से पहले महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था. रत्नाकर डाकू लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन नारद मुनि से मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया और इसके बाद उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया और कठिन तपस्या की और बाद में उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की. आइए सुनते हैं रामायण की ये कुछ पंक्तियां.
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी.
Friends, Valmiki Jayanti is being celebrated in different parts of the country today. Members of the Valmiki sector also revere him as a messenger of God and celebrate Pargat Divas with great devotion. The procession is called Shobha Yatra is also taken out to mark the occasion.
और आज स्वामी राम तीर्थ की पुण्यतिथि है. स्वामी राम तीर्थ महान संत, देशभक्त, कवि और शिक्षक थे. उनका पूरा जीवन प्रेरणादायक रहा. स्वामी राम तीर्थ का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला जिले में हुआ था. इनके जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था. राम तीर्थ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे. उन्होंने श्रीकृष्ण और अद्वैत वेदांत पर कई निबंध लिखे, जिससे देश में एक नई वैचारिक क्रांति का जन्म हुआ. वे स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू भारतीय संस्कृति के बारे में विदेशियों को परिचित कराया. और आज भी उनके नाम पर कई मिशन और संस्थाएं हैं जो धर्म, अध्यात्म और सामाजिक सुधार का कार्य कर रही हैं.
2001, this day, legendary American songwriter, composer Jay Livingston died of pneumonia. He specialized in writing film scores, original soundtrack songs, best known for writing hits with Ray Evans for Doris Day, Whatever Will Be, Que Sera Sera, and Nat King Cole, Mona Lisa. So let's just check out this beautiful track, Que Sera Sera, Whatever Will Be, Will Be.
When I was just a little girl, I ask my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will.
आज कृष्ण भक्त मीराबाई की जयंती है. संत मीराबाई भगवान कृष्ण से अपने पति के रूप में प्रेम करती थी. उनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था. वे एक महान संत, हिंदू रहस्यवादी कवि के रूप में जानी जाती हैं. उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं. ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के कुर्की गांव में हुआ था. वे राजा राव दुदाजी के छोटे बेटे रतन सिंह की बेटी थी. उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, परंतु कृष्ण के प्रति प्रेम में उन्होंने राजपाट संसार सबसे किनारा कर सिर्फ अपने आराध्य कृष्ण की ही भक्ति की और वो वृंदावन चली गई. अपने पति की मृत्यु के बाद वो शाह बिहारी मंदिर के पास शालिग्राम मंदिर में रहा करती थी और वहीं कृष्ण भक्ति करती थी. एक बार वो द्वारका गई और फिर उसके बाद माना जाता है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्हीं की मूर्ति में समा गई. आइए सुनते हैं ये भजन।
मेरे पति धर्म पाले दूसरा न कोई, मेरे पति धर्म पाले दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति साई, मेरे पति धर्म पाले।
1923 birth anniversary of American jazz guitar player Barney Kessel, who was a member of the band Wrecking Crew. Kessel was also a member of Oscar Peterson Trio and worked with Billie Holiday, Sam Cooke and many others. He also appeared on the Beach Boys' Pet Sounds album. Here's a track to remember him. This is Good Little Men. After guitar, good old Jamaica comes Ziggy Marley, the son of reggae giant Bob Marley. Ziggy, whose real name is David Nesta Marley, made a name for himself as one of the genre's leading artists. Ziggy and his siblings formed the Melody Makers in 1981 after their father's death. Their 1988 album Conscious Party won a Grammy, helped the group break through to mainstream audiences. Marley began a solo career in 2006, went on to record several more Grammy award-winning albums. Here's a sample of his brilliant song, Love Is My Religion. Here goes.
Yeah.
Yes, friends, let's keep it that way, friends. You know, love and peace should be our religion. Divya?
बिल्कुल। और अब बात करते हैं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल, जिनका आज जन्मदिवस है। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से पैरेलल सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी खास पहचान बनाई थी। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।
हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा
Country singer-songwriter Alan Jackson celebrates his birthday today, friends. Neo-traditional country is his music style. Jackson has recorded 16 studio albums, 3 greatest hits albums, 2 Christmas albums, 2 gospel albums. One of his smash, this is Chattahoochee. Check it out now.
It's hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night.
हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और कवि दूधनाथ सिंह का जन्मदिवस है। दूधनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से 60 के दशक के भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को चुनौती दी। दूधनाथ सिंह उन कथाकारों में शामिल हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को चुनौती दी और साठोत्तरी कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया।
And also, friends, today's birthday of talk show host, actress Simi Grewal. She has acted in few films, remained a television personality.
और Simi Grewal को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला 1966 में और 1968 में। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
किसके नाम से मेरे घर में जैसे सूरज निकला है।
और आज भारत के पहले स्पिनर अनिल कुंबले का जन्मदिन है। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। अनिल कुंबले भारत के पहले स्पिनर तथा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीमित ओवर वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट का आंकड़ा पार किया था। और अब समय है
यस ऑफ कोर्स टाइम टू वाइंड अप सो स्टे ट्यून्ड कमिंग अप नाउ इज समाचार प्रभात द हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट डे नमस्कार